ओम शांति। आप सभी जो इधर बैठे हैं, साइड बैठे हैं, प्लीज एक बार फिर से बीच में आ जाएंगे। आज के इस सत्र में मैं ब्रह्मा कुमार अनुज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना वेलकम करिए। एक उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों तक पहुंची कि एक बहुत मुखर किसी व्यक्ति के बेटे को गाने का बहुत बड़ा शौक है। ये रियल घटना है और कहा जाता है शौक है, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन न शायरी की समझ हो, न अदायगी हो, न अंदाज हो, फिर भी उनको मौका मिलता है, ये उनका भाग्य है और होना भी चाहिए। लेकिन जब हम कभी किसी को ऐसे देखते हैं तो निश्चित रूप से जिसके पास मौका है, मंच है, जिसके पास शौक है, साधन है और संपर्क है, उनको अपने शौक को पूरा करने का पूरा हक है। लेकिन बात जब उन हुनरमंदों की आती है, भारतवर्ष के उन सपूतों की आती है जिनके पास प्रतिभा भी है, मंच है, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता। सो आज बड़े दिल से, बड़े शिद्दत से एक बात कहने का मौका मिला है कि ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा मंच है जो सबको मौका भी देता है और सबको मंच भी देता है। तो एक बार ब्रह्मा कुमारी इसके लिए जोरदार ताली। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो क्या है कि अगर किसी के पास शौक है, साधन और संपर्क नहीं है, वो भी ब्रह्मा कुमारी उनको प्रोवाइड कराता है। अगर फन है तो उस फन को फनकार बनाने का काम भी ब्रह्मा कुमारी करता है। आज का जो ये सत्र है बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वर्णिम भारत का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और स्पार्क विंग इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है। स्पार्क विंग इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन आज का कार्यक्रम विशेष है क्योंकि पिछले कई सारे सत्र हुए, लेकिन जब वैलिडेटरी सेशन की बात आती है तो देखते हैं जितने लोग इधर बैठे होते हैं उतने ही उधर बैठे होते हैं। तो मेरा मन यही कर रहा था कि जितने भी इस साइड बैठे हैं कम से कम लगे तो सही ना कि हॉल भरा हुआ है, हॉल खाली ना नजर आए। तो सबसे पहले आज के सत्र को शुरू करने से पहले, मंच को सजाने से पहले मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि एक कहा जाता है कि एक अपनी बात कम शब्दों में कैसे बोले, इसके लिए एक वक्ता लगभग 2 घंटा बोले। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा टाइम, आप लोगों का समय, सारा कुछ श्रोताओं के ऊपर आ जाता है। तो जो कोई भी अभी, क्योंकि मंच सजा नहीं है, तो इस बात का आवाहन किया जा सकता है कि हम सबको समय का पूरा पूरा ध्यान रखना है और समय पर सारी चीजें पूरी हो तो बहुत अच्छा है। अपनी बात कम शब्दों में कहें और जो समय मिला है उसी समय के अनुसार कहें। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज के सत्र के लिए सबसे पहले अपने मंच का आह्वान करता हूं। आप एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। सबसे पहले जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर राजकुमार, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, आपका हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। भाई साहब प्लीज पधारें। साथ ही साथ हमारी आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी, चेयरपर्सन स्पार्क से, आदरणीय दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज के मोहम्मद फयाज, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन औरंगाबाद, आप भी हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर सुशील चंद्रा, साइंटिस्ट जी इन मैथ्स डीआरडीओ दिल्ली, और हमारे आदरणीय श्रीकांत भाई जी का भी मैं आह्वान करना चाहूंगा, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क, आदरणीय अलका दीदी जी, महाराष्ट्र रीजनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क, और आदरणीय संजय भाई जी, साथ ही साथ आदरणीय राजयोगिनी नेहा दीदी मुंबई फाउंडर मेंबर ऑफ स्पार्क, इन सभी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और दो मिनट, क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम 10 मिनट लेट शुरू हुआ है, इसके पहले भी कोई यहाँ मंच पर आए थे, उन्होंने कहा आपने 9:30 का समय लिखा है, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में डिले हुआ, इसके लिए हम सभी परमात्मा को 2 मिनट याद करके इस बात को भुलाएंगे। तो 2 मिनट के लिए परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं आदरणीय दीदियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेहमानों का बुके और बैजे से स्वागत करेंगे, साथ ही साथ वेलकम डांस के लिए हमारी कुमारी रिमझिम जो कश्मीर से पधारी हैं, आप वेलकम डांस प्रस्तुत करेंगे। और उसके गीत के बोल हैं, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। और आप सभी अपनी तालियों से हमारे गेस्ट का स्वागत करते रहेंगे। स्पार्क विंग के लिए उस दिन अनाउंसमेंट बहुत अच्छा हो रहा था कि लगभग 4,300 इसके लाइफ मेंबर्स हैं, और जो 18 विंग्स हमारे 20 विंग्स हैं, शायद 20 विंग्स में से जो 18 हमारी स्पार्क विंग है, कहा जाता है सबसे बड़ी विंग है, और इसको लगभग सभी ने बहुत सराहा। तो 2-3 दिन से सत्र चल रहा है, आप सब सारे सुन रहे हैं सारे सत्रों को,
लेकिन जब समापन सत्र की बात आती है तो लगता है कि अब चलो अब इसका समापन होने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत इसको कहा जाता है। और आज का मंच भी इतना सुंदर है कि यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। हमारे इतने अच्छे स्पीकर्स हैं जो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। आदरणीय नेहा दीदी का स्वागत। हमारा फूल पीछे चला गया था, दोबारा हमारे पास आ गया है। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। अभी हमारी कुमारी रिमझिम तैयार नहीं है किसी कारणवश, तो जब तक उनका गीत आता है तब तक कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं कॉन्फ्रेंस का रिव्यू लेकर अपने सामने बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुशील चंद्रा को, जो साइंटिस्ट जी रैंक पर कार्यरत हैं। आप हेड हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज DRDO दिल्ली के। आप 16 वर्षों से स्पार्क से जुड़े हैं और स्पार्क कोर ग्रुप मेंबर हैं। आप स्पार्क के साइंटिफिक एडवाइजर हैं। और इनके लिए एक बड़ी विशेष बात आपको मैं सब कहना चाहूंगा कि दुनिया में कहा जाता है समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, समझदार व्यक्ति वो है जो छोटी छोटी बातें समझने लगे। सो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे हमारे सुशील चंद्रा जी के लिए। ये दिल्ली में भी ऐसे चलते हैं और यहाँ भी ऐसे ही चल के आ रहे हैं। तो आइए सुशील भाई, थैंक यू सो मच।
थैंक यू अनुज भाई। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेलीगेट्स ऑन द डायस, ऑफ द डायस एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा अनुज भाई ने कहा, मैं थोड़ा सा जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसके बारे में समीक्षा देना चाहूंगा। जो 7 तारीख से ये प्रोग्राम का आरंभ हुआ, तो जो हमारा पहला सेशन था जिसकी हमारी मेन कोऑर्डिनेटर थी सुमन बहन, और जिन्होंने इनवाइट किया पहले स्पीकर्स को डायस पर, और फिर हमारा जो जैसे स्वागत करते हैं डांस जो मीनल बहन और कुमारी जया के द्वारा किया गया, उसके बाद में हमारी अलका दीदी ने वेलकम एड्रेस, और जैसा कि उनका मेन मैसेज है कि सिंप्लिसिटी ब्रिंग्स पीस, ये उनको देखने से भी नजर आता है। उसके बाद में अंबिका दीदी ने जो ये बताया कि सुख शांति और संपन्नता यही हमारी स्वर्णिम दुनिया की की है, और हाउ बाय शिफ्टिंग अवर कॉन्शियसनेस वी कैन एक्चुअली ब्रिंग स्वर्णिम भारत, दैट्स व्हाट शी शेयर्ड अबाउट इट। उसके बाद में करुणा भाई ने, जैसा आप सभी लोगों को जिन्होंने अटेंड किया था, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने 3 चीजों का रिसर्च करने के बारे में बताया, और ये बताया कि सत्य की पहचान ही शांति की स्थापना का आधार है। और सत्य क्या है? रियल सेल्फ, देन गॉड एंड देन ड्रामा, प्रकृति। और इसी पे उन्होंने रिसर्च का शुरुआत किया था, और आप सब लोगों से भी गुजारिश किया था कि उस पे रिसर्च किया जाए। देन फिर हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MSME के जो थे, उन्होंने शेयर किया कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आत्मा का बोध आवश्यक है। और साथ ही साथ उन्होंने शेयर किया कि साइंस एंड रिलीजन हाउ दे गो हैंड इन हैंड, एंड सबका कल्याण जो है उसी के ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इस प्रोग्राम का लक्ष्य भी हम स्वर्णिम भारत को किस तरीके से साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये आर रिसर्चर्स इन डिफरेंट डायमेंशंस एंड ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी टुगेदर विद दैट, हाउ वी कैन ब्रिंग इट। उन्होंने उसके लिए अपने उदाहरण MSME और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी दिए। उसके बाद विनायक दालवे जी, जो कि फॉर्मर एडवाइजर भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, ही शेयर्ड अबाउट कि ये सोल जो है वो इवॉल्व हो रही है और वो सुप्रीम सोल के निकट जा रही है और उसी वजह से ये सोल के ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एंड देन मुझे उम्मीद है सबको याद होगा उन्होंने जो आइंस्टीन का इक्वेशन है उसके बारे में भी कहा कि वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ना होके ई क्यूब इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्यूब करके, और उन्होंने ई क्यूब को जो एम्फेसिस दिया था एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइजिंग पे। उसके बाद में जो हमारे फ्रीमैन जो विष्णु लांबा जी, उन्होंने शेयर किया अपने पूरे एक्सपीरियंस के ट्री के लगाने के बारे में भी, और साथ में लास्ट में इनवाइट भी किया सभी लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो कि जयपुर के आसपास हैं, कि उनके पास अगर कुछ भी वेस्ट है तो वो वेस्ट अपना देकर अपने से ट्री ले सकते हैं और ट्री का प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर वैष्णव हु इज अ सीनियर साइंटिस्ट इन नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर, शी सेड स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस ऑफ सोल एंड बाई स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस वी कैन लीड टू सक्सेस, एंड दैट्स व्हाट शी शेयर्ड अबाउट हर ओन सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो, एंड देन शी शेयर्ड अबाउट हर रिसर्च वर्क एरिया। देन आफ्टर दैट जो हमारी बीके शिविका बहन हैं जो एजुकेशन विंग से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जो बीकेस के कंट्रीब्यूशन न केवल एजुकेशन विंग के बल्कि हमारी डिफरेंट विंग्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा जितना भी कार्य हो रहा है, और एम्फेसिस दिया कि विश्व परिवर्तन को लाने के लिए स्व परिवर्तन का बहुत जरूरी है। उसके बाद में शशि बहन ने मेडिटेशन को कराने में हमको एक्सपीरियंस कराया। देन उसके बाद जो हमारा एड्स को जो मॉर्निंग सेशन विच वॉज कॉल्ड एज ए न्योग्रल सेशन, उसमें सरोज दीदी ने शी वेलकम्ड ऑल पद्मश्री पद्म विभूषण एंड शी शेयर्ड दैट कि इसके लिए या तो एक प्लेस होता है कि जहां राष्ट्रपति भवन में सब इतने सारे पद्म विभूषण पद्मश्री वगैरह होते हैं, या फिर ब्रह्म कुमारी में एक साथ इतने लोगों का आगमन हुआ है। एंड दीदी हार्डली वेलकम्ड ऑल द गेस्ट डेलीगेट्स दादी रतन मोहिनी बीके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद में मैंने शेयर किया था कि हमारी स्पार्क विंग किस तरीके से सोसाइटी को रिसर्च और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके डिफरेंट इंटर और इंट्रा बीकेस, देन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देन विद रिसर्च एकेडमिक एंड कॉरपोरेट, किस किस तरीके से हम लोग किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं। और साथ में मैंने लास्ट में शेयर किया था जैसे कि USAID प्रोग्राम कर रहा है पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, एंड US हैज स्टार्टेड चेंजिंग देयर एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, जो कि हमारे लर्निंग का बीकेस की लर्निंग का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम्स को रिसर्च के रूप में लेके चल सकते हैं। उसके बाद हमारी स्पार्क विंग की चेयरपर्सन अंबिका दीदी ने शेयर किया कि टू ब्रिंग स्वर्णिम भारत विच विल बी सतो प्रधान भारत ए रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट इज नीडेड एक्चुअली फॉर द होलिस्टिक रिसर्च, बिकॉज विदाउट डिस्टर्ब्ड माइंड ओनली वी कैन एक्चुअली डू गुड रिसर्च, एंड उसी से हमारी सतो प्रधान बुद्धि होगी। देन पद्मश्री डॉक्टर HS पावस्कर, हु इज एन इंडियन फिजिशियन एज वेल एज साइंटिस्ट, ही शेयर्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मेडिकल साइंस। WHO हैज ऑलरेडी एडेड दैट डायमेंशन इन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, एंड देन बिकॉज ही हैज वर्क्ड स्पेशली रिलेटेड टू स्नेक बाइट एंड ऑल, देन ही शेयर्ड अबाउट दैट बाई इवोकिंग स्पिरिचुअल इमोशंस इन मी एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, एंड देन ही वॉज एबल टू ट्रीट द पेशेंट। ही मेंशन डिफरेंट केसेज which were treated because of spirituality was evoked in the mind of researchers. Then hamari Rajyogini Dr. Nirmala Didi ji, who is the joint chief of Brahma Kumaris, she shared in Swarnim Bharat which will call Satyug will be completely without violence, and Godfather Shiva is bringing that word through Raj Yoga.
उसके बाद में डॉक्टर VGS शर्मा,
who is a scientist at Bharat Serum and Vaccines Limited, who was the guest of honor. He also emphasized that focus of spirituality is centrality of the elements, naming self, God, others, and interrelationship between these three. He gave many examples. One of the examples he gave was how in case of terminal cancer patients, the spirituality plays the role, important role. Uske baad mein Dr. Smita Lele, who was former dean of Institute of Chemical Technology, Mumbai, she shared that scientists must collaborate with Brahmakumaris and spark to explore and do research, that is, search it again. Uske baad mein humare Mrityunjay Bhai, who is the executive secretary of VKs, especially, I am sure everybody remembers, कि उन्होंने एंगर के बारे में कि who has never got anger, उन्होंने आर्ग्यू किए थे, and he shared that will you apply science or silence to manage your anger, and whether medicine or meditation. So that's what he especially emphasized on meditation. Then Rajyogini B.K. Nalini Didi, who is the director of B.K. Ghatkopar, Mumbai, she shared about that we are now celebrating Amrit Mahotsav, but way back in 1936, Brahma Baba, Shiv Baba, shown to Brahma Baba a vision to have a better world. And she shared that scientists who are inspired today by Shiv Baba, in collaboration with us, let's come together in doing research with science and spirituality together, to make Bharat, Swarnim Bharat, a new society. Then Dr. Kantilal Nagre, who is an assistant professor in Birla College, Kalyan, Mumbai, offered vote of thanks. Then the next session was the plenary session 1, in which the topic was ushering the golden age of research and insights. Usme Dr. Sanjeevan K. Banerjee, who is chairman of Genetics Life Sciences, Pune, shared that science and spirituality have diverged, but that was not always the case. This materialistic science has a lot of shortcomings, and we are actually struggling due to that. So we have to think to solve these problems by spirituality. Then Mr. Devi Goyal, who is MD Concurrent Control Systems Private Limited, he also says that science and spirituality together will bring a different kind of a change. Then Padmashri Professor R.B. Hosur, Indian biophysical scientist, he explained the concept of Swarnim Bharat in detail, where there are no vices like anger, attachment, etc. And he also appreciated the services of BKs and how BK is bringing one world family, and self-transformation will nullify the conflicts. Through all this, we can bring Swarnim Bharat. Then Rajyogi B.K. Suryabhai Ji, he gave multiple examples of effect of positive thoughts through Rajyoga, that is spiritual power, on human mind and body. Then after that, in felicitation ceremony, our Rajyogi Prashmohan Bhai Ji, he said that bringing golden age through the amalgamation of spirituality and science is the most right step. Then after that, Padmashri Shivanandji, he shared, Padmashri is not an award to me, but to the whole world. It's not an honor to me, but symbolic of spreading the message to peace of the world. Then Mrityunjay Bhai Ji, he appreciated sparkling to bring all Padma Vibhushan, Padma Shri, Padma Shri from different areas on the same stage. And finally he emphasized, you are not only Padma Shri, as our Shiv Baba says, you are Padam Padam Bhagya Shahi. Thank you. Om Shanti.
Thank you, Sushil Bhai Sahib. अब मैं इंस्पिरेशन के लिए अपनी आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी जी को बुलाना चाहूंगा। आप चेयरपर्सन इस पार्क की, दीदी को आप दो तीन दिन से सुन रहे हैं, तो दीदी इस पार्क के इतने पावरफुल सोल हैं और इतना अच्छी तरह से सबके अंदर इस पार्क भरते हैं और अव्यक्त मुरलियों पर इतना गहन चिंतन है इनका। जो अव्यक्त मुरली सुनते हैं हमारे वीके बैठे हैं, बाकी आप सब भी कुछ दिन में हमारे वीके परिवार में जुड़ने वाले ही हैं, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, आशा है। तो आदरणीय अंबिका दीदी जी, बैंगलोर सब जोन का जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के आप लगभग 300 से भी अधिक सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं, तो दीदी के लिए एक बात जरूर कहूंगा मैं कि ईश्वर से यही गिला है मुझे कि इतनी देर बाद क्यों मिला है मुझे। तो दीदी के लिए एक बार जोर ताली ताली बजाएंगे। थैंक यू।
ओम शांति, ओम शांति, बोलिए ओम शांति। हमारे सब परम आदरणीय अतिथिगण और सारे मेरे भाई बहने, हमारा नमन स्वीकार करें। आज की सभा को देखते हुए मुझे 1970 की बात याद आ रही है। आप सबको, हम सबके प्राण प्यारे परम पिता, जिसको हम दिल से याद करते हैं, मदद मांगते हैं, उनको अपनी इमरजेंसी में बुलाते हैं, लेकिन पता नहीं था वो पिता ने आप सबको उसी टाइम याद किया है। आप सोचेंगे कैसे याद कर लिया हम सबको, क्योंकि परमात्मा बाप साइंस और साइलेंस की बैलेंस की बातें कहते हुए विज्ञान चलते चलते ऐसे खोज करेगा जो अननोन बात शरीर की थी वो तो स्पष्ट कर दिया हेल्थ साइंटिस्ट ने, लेकिन अंदर जो मैं एक चैतन्य शक्ति, मैं एक एनर्जी आत्मा हूँ, ये भारतवासियों को पता है, लेकिन आत्मा के अंदर इतनी जो ट्रेमेंडस एनर्जी है, जो मन बुद्धि संस्कार द्वारा ये शरीर द्वारा कार्य करती है, लेकिन उन शक्तियों की एक गहरा प्रभाव अपने पर, अपने शरीर ही नहीं लेकिन वायुमंडल पर और दूसरों पर और सारी दुनिया पर क्या पड़ता है, और वो शक्तियां, हमारी जो मनोशक्तियां है, कितने स्पीड से, कितनी फ्रीक्वेंसी से, और हर एक के जो वाइब्रेशन से वो कहाँ तक पहुंचता है, जहाँ पहुंचता है वहां उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये मेरे रिसर्चर्स बच्चे, वैज्ञानिक बच्चे आकर के दुनिया के आगे ये सिद्ध करके बताएंगे कि अंदर की जो आत्मा, जिसका नेचुरल स्वभाव आध्यात्मिकता है, और आत्मा के पिता परम पिता की वो जो ताकत, स्पिरिचुअल एनर्जिया है विशेष, जो आत्मा और प्रकृति के ऊपर एक गहरी चाप, गहरी प्रभाव डालता है, और युग परिवर्तन के समय में ये जो वास्तविक स्वरूप, सत्य स्वरूप जो मेरे का इटर्नल आइडेंटिटी है, उस पर वापस आने की जो तरीका है राजयोगा मेडिटेशन का, वो सारी बातें मेरे बच्चे सिद्ध करेंगे दुनिया के आगे। तो आप सोचिए, आपका आवाहन 1970 से परमपिता परमात्मा आपके आवाहन करते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे समय आता गया, डेफिनेटली स्पार्क विंग द्वारा हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जुड़े हैं, लेकिन जो बाप चाहते हैं, हम सब के प्राण प्यारे बाबा, उसका काम और भी है, क्योंकि उसमें परमात्मा बाप ने कहा कि मेरे से मेडिटेशन में जो पावर्स लेते हो, द स्पिरिचुअल एनर्जी, द प्योर एनर्जी, वो एनर्जी जब हम ज्ञान में बैठते हैं मेडिटेशन में, वो हम लेते हैं, तो वो एनर्जी एक है, आप अपनी एनर्जी से प्रकृति और अन्य आत्माओं के ऊपर अपनी असर डालना, दूसरा परमात्मा से जो एनर्जी लेते हो, तो वो एनर्जी का प्रभाव आत्मा और प्रकृति और सर्व के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, उसकी इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस से बदलाव क्या आती है, लाइक डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, जिस द्वारा अभी सभी हम सबको एक निजी स्वरूप में, निजी गुणों में जो हमारी वास्तविक स्वरूप है, सत्य स्वरूप, उसमें वापस आना है, उसके लिए उनकी एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर जो था वो खत्म हो चुकी है। आप सोचते होंगे अभी क्या जरूरत है, हम अभी इतना आयु तो नहीं हुआ है 65-70, बाद में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जावे फिर हम स्पिरिचुअलिटी के लिए सोचेंगे, ये बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज डिसिप्लिन, इट इज वैल्यूज, हर घड़ी हर कार्य में हर संकल्प में हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग। तो बाप की वो काम, परमपिता की वो कार्य जो है, वो तो ये वाइब्रेशन को कैसे मेजर करेंगे, क्या क्या इमोशंस होंगे उसको कैसे मेजर करेंगे, जब वो मुरली सुनाता तो हम सोचते थे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन अभी की रिसर्च को देखते हुए सब समझ में आता है, साइंस इतना गहराई में इतना सूक्ष्म रीति से काम कर रहा है। तो ये अभी बहुत आवश्यक रिसर्च है, आवश्यक बात है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया की सर्व आत्माओं की सुख शांति के लिए, ये विश्व कल्याण के लिए इसका दरकार है। इसलिए मैं आप सभी जो भी आए हैं, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स, या जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप आए हो या यूनिवर्सिटीज से आए हो, मैं आप सबको, अपने भाई बहनों को, आप सबको निमंत्रण दे रही हूँ, आप सभी पार्क से जुड़े, हम और आप सब मिल करके अभी ये नई दुनिया को लावे, मनुष्य आत्माओं की जो इतनी दुख अशांति अंदर इतने टूट चुके हैं, पैनिक है, उन सब को उन बातों से निकाल के लावे। इतने कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
दीदी ने स्पिरिचुअलिटी को इतना बहुत आसानी से आपके सामने रखा है, तो मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ स्पिरिचुअलिटी का। सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये चेयर्स और ये साथ में सोफा है, ये सब किसका है जी? एक साथ बोलेंगे किसका है? हाँ जी, बाबा का है। किसका है? ब्रह्मा कुमारी का है या बाबा का है? तो इस पर बैठ के आपको मजा आ रहा है, हाँ या ना? एक साथ बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा है? क्यों मजा आ रहा है पता है आपको? क्योंकि दूसरे का है। बस जो दीदी ने कहा उसका सार ये है कि परमात्मा 86-87 वर्षों से हमको दिन रात यही सिखाते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के जाना है, तो आजादी के अमृत महोत्सव और स्वर्णिम भारत के निर्माण में सबसे बड़ा एक काम क्या होगा कि हमको दिन रात याद दिलाना पड़ेगा कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के जाना है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आपके वेलकम डांस के लिए। फिर से मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ कुमारी रिमझिम को, आप तैयार हैं? बच्ची का वेलकम करेंगे। जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला, बहुत प्यार मिला है। आप सब हौसला अफजाई करते रहेंगे, काफी देर बाद तैयार होके आए हैं। नहीं सॉन्ग नहीं है? अरे सॉन्ग अभी तो उन्होंने कहा तैयार है। चलिए आप ऐसे खड़े ना रहें, इधर आ जाइए, आप इधर आके बैठे। अभी आपका सॉन्ग आया नहीं है, ताली बजाओ। चलिए जब तक इनका सॉन्ग आता है तब तक हम अगले स्पीकर को बुला लेते हैं। हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर मोहम्मद फयाज जी हैं, डॉक्टर मोहम्मद फयाज। और डॉक्टर साहब यहाँ का एक थोड़ा सा कुछ जो कहा जाता है कि हर मजहब का हर इंसान अपने अपने हिसाब से अल्लाह ताला की बंदगी जरूर करता है, लेकिन सही पहचान ना होने की वजह से कई बार सच्चे सरूर का एहसास नहीं कर पाता। तो अल्लाह ताला परमात्मा जिसको कहा जाता है वो एक नुक्ताए नूर रूह है, और वो बाबा आदम के जिस्म में दाखिल होकर हम सबको तालीम देता है और उससे एक रूहे आला स्थिति हमारी बनाता है। और कहा जाता है कि वो हमको जन्नत की सैर कराता है। तो ऐसे परमात्मा को, ऐसे रूहे आला, ऐसे नुक्ताए नूर रूह परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। और जो आज का सेशन है, जो यहाँ पर सत्र चल रहा है, उसका एक ही सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि हमको स्वर्णिम भारत बनाना है। और उसमें हम सभी अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं, जब वो जुड़ते हैं तो उनसे एक नया संगठन बनता है। और डॉक्टर मोहम्मद फयाज जी हमारे बीच में हैं, आप एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन औरंगाबाद रीजन औरंगाबाद के। आप पीएचडी हैं पॉलिटिकल साइंस में, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द राइज ऑफ हिंदुत्व इन इंडिया। आपने 1980 से 2000 के बीच ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से जुड़े हुए, और सबसे बड़ी विशेषता आपकी ये है कि मेंबर ऑफ मैनेजमेंट काउंसिल सीनेट एंड एकेडमिक काउंसिल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के साथ आपने काफी दिनों तक काम किया है। और परिचय जो यहाँ है वो तो है ही है, लेकिन मैं आपको देखकर, आपकी मुस्कुराहट देखकर मुझे एक बात आ गई कि न अंदाजे बयां है न तर्ज तकल्लुम। एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएंगे। न अंदाजे बयां है न तर्ज़े तकल्लुम, आपको देखकर मैं कहता हूँ सलाम वालेकुम। तो एक बार भाई साहब का जोरदार स्वागत है।
मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे सभी भाई और बहन, सभी को मेरा नमस्ते। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यहां आने के बाद एक स्पिरिचुअल गैदरिंग में ये बात समझ में आई कि जब हमने मान लिया है, इस मान्यता ही नहीं, हमारे कर्मों से ये जान लिया है कि आप और हम एक ही क्रिएटर से, जब मैं आपको देखता हूं तो एक डिवाइन स्थिति आप में होती है, जो आप में है वो मुझ में है, वो एक इक्वालिटी का स्वरूप देती है। इसलिए मैं नमन करता हूं और आपको आदर पूर्वक सलाम भी करता हूं। अब इसके बाद मैं पात्र हुआ हूं ओम शांति के लिए। ओम शांति पीस इन बॉडी, ओम शांति, पीस इन माइंड, ओम शांति, पीस इन स्पिरिट। पिछले 2-3 दिनों से मैं सोच रहा था, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफी है, उसमें नहीं जाना चाहता है। ये बात समझ में आने के बाद हम ये जानते हैं कि ये मानव निर्माण की प्रक्रिया है, ये कोई सिंप्लिसिटी नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं थोड़े वक्त के लिए और निकल जाएं। हमने जो जाना है, जो माना है, उसको आगे भी बढ़ाना है। गालिब ये कहते हैं, गालिब कोई सूफी पोएट नहीं है, गालिब का नाम सुनकर आप एकदम अचंभित हो जाए कि मैं कोई गजल सुनाने वाला हूं, ऐसा नहीं है। उनका एक शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। ये जो बात है कि ये तो बात है कि जीवन में हर काम आसानी से होता नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी से हो सकता है कि आदमी इंसान बने। और ये जो प्रोसेस है, मैं समझता हूँ ब्रह्म कुमारी प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का ये जो सेंटर है, ये इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। और इसकी सफलता जब ही होगी जब इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और इस बात को सीरियसली देश निर्माण के लिए हम इसको एक आदर स्वरूप न देते हुए हमारे डीड्स में, हमारे कर्मों में इसको जो है तो अपनाएंगे। मैं कई दिनों से, दो दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस बहुत सारी बातें हुई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सोसाइटी एक टॉलरेंट हो, सोसाइटी में अच्छाई और बुराई को समझने का मिजाज हो, ये रिसर्च से ही होता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो तो पॉसिबल है, लेकिन सोशल साइंसेस में जो भी रिसर्च होता है उसकी अच्छाई और बुराई को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं ये बात कहूँ कि पिछली रात हमने जो है आजादी के परवानों को याद किया है, चलो हम स्पिरिचुअलिटी के फरिश्तों को भी याद करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, जो पिछले कई साल से हमको ये सीख मिलती है कि जैसे महाराष्ट्र में 13वीं सदी में जो संत ज्ञानेश्वर हुए, 21 वर्ष की आयु में उन्होंने कमेंट्री ऑन गीता लिखा, वो बात की 13वीं सदी में, हम आज 21वीं सदी की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता ये बहुत डिफरेंट विषय है, आज को गीता को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है, ब्रिजमोहन जी ने बहुत सारी बातें गीता पर आधारित होते हुए कही है। हमारे सामने जब उन्होंने बात की उसका सारांश यही था कि भाई गीता में जो उपदेश है वो नॉन वायलेंस का है, गीता में जो उपदेश है वो एक मानव पर आधारित एक ऐसी समाज निर्मिति का है जो हमको संपन्न करता है, एक दिशा बताता है कि भारत कैसे स्वर्णिम होगा। ये बात तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, संत तुकाराम के भी जो अभंगों में जो महाराष्ट्र के ताल्लुक करते हैं वो समझ सकते हैं कि संत तुकाराम ने जो है अपने अभंग और कीर्तन से जो है तो एक जागृति, एक स्पिरिचुअल निर्माण का काम किया। इसी तरह से आप ये देखते हैं कि मीरा जी के जो भी डिवोशनल सॉन्ग्स है, डिवोशनल पोएट्री है, वो किस बात को दर्शाती है, सबमिशन को दर्शाती है, मैं को भूल जाती है। जो परमपिता आप जितनी भी नाम से जानते हो, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो गॉड है, समर्पण है, समर्पित होना है। एक ऐसे स्पिरिट से आपको लगा होना है कि जहाँ पर आप अपने आप को भूल जाते हैं और आपका एक ही लक्ष्य रहता है कि वो जो हमारे अंदर मौजूद है वो आत्मा है, वो डिवाइन एंटिटी है, उसका किस तरह से कल्याण हो। जैसे कि हम जानते हैं कि मीरा जी के बहुत मशहूर जो है तो एक ये है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कोई ऐसा डिवोशनल सॉन्ग है। जिस तरह से आप यहाँ अध्यात्म में मेडिटेशन में जैसे बैठकर अपने आप को सोचते हैं, जैसे कि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि अंतर आंतरिक सैर को निकलते हैं कि आप भूल जाए, आप एक शांति के लिए जो मेडिटेशन करें, वो एक भाव उसके अंदर है। ये समझने की जरूरत है जो हमारा असासा है, हमारा जो है तो ये असासा, ये भंडार इतना बड़ा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों को भूल रहे हैं। इसी वजह से हमारे बीच वो स्पिरिचुअल जो भाव होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे वारकरी संप्रदाय में भी जो विठ्ठल 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 जो है, ये जो अवस्था है ये रम्स है, ये सूफियों में भी ये चीज पाई जाती है। तो आप वो उसके अंदर अपने आप को खोजिए, तो मैं समझता हूँ कि जो स्पिरिचुअल भावना आप में डेवलप होगी तो आपका संबंध एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ उसी तरह होगा जैसे कि हम अपेक्षा करते हैं ब्रिज मोहन जी ने भी। मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान में मुझे यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में बात करना है, लेकिन जो सड़क जो मेन मेन मुद्दे है वो बात ना करूँ तो मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि रस्खान है, उनका नाम जो है तो आप ये देखेंगे सैयद इब्राहिम खान, ये लॉर्ड कृष्णा के बहुत डिवोटी थे, बहुत बड़े पोएट थे। अगर आप इनकी पोएट्री सुनेंगे कि डिवोशनल पोएट्री कैसी होती है, ये क्या वजह है कि इस नाम का आदमी भी जो है तो एक संप्रदाय के नहीं बल्कि विश्व के निर्माणकर्ता के बारे में इतना सोचता है। क्यों ये भाव उसमें आई है? एक वातावरण निर्मित होती है, उस वातावरण में ये बातें की जाती है। दूसरे मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो है तो पंजाबी शायर है गुले शाह, ये पंजाबी सूफियों का बहुत बड़ा बड़ा असासा है। जब वहाँ पंजाब में ये बहुत लोकप्रिय है, क्या सिर्फ पंजाबी ही ये जानेंगे, हम भी जाने कि ये कौन है? इस तरह का मैं ये कहूँगा कि ये वातावरण को, ये सीख को रिविजिट करना चाहिए, इस तरह की बातें जो है तो समाज में लानी चाहिए। उसी तरह से हम ये देखते हैं कि एम्परर शाहजहां के बड़े लड़के, बड़े सुपुत्र दारा शिको, वो संस्कृत के और पर्शियन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने जो है तो उपनिषद और वेदांत की बहुत स्टडी की, जैसे सूफिज्म इन इस्लाम की उन्होंने स्टडी की, वैसे ही जो है तो वैदांतिक फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म की भी स्टडी की, और उन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन जो पर्शिया में किया उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया, तो उपनिषद के बारे में जो विश्व को बताया गया वो ये हमारे जो है दारा शिको के। तो ये हम, और उन्होंने एक जो किताब लिखी थी उसका जो टाइटल था, उसका टाइटल था कि मजमुअल बहरैन, मजमुआ होता है कॉम्बिनेशन को, बहरैन का मतलब होता है समंदर का, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीज, एक वैदांतिक फिलॉसफी और सूफी फिलॉसफी का। मैं उसके हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि दारा शिको के क्या पॉलिटिकल जो भी थे, लेकिन एक स्पिरिचुअल लाइन में अगर हम सोचते हैं तो ये भी एक हमारा असासा है, एक पार्ट है। दूसरा असासा हमारे पास कबीर का भी है, संत कबीर है, वो भी एक डिवोशनल और स्पिरिचुअल हमारे पास एक ऐसा अहम किरदार है जिनके बगैर हमारी स्पिरिचुअल तारीफ कंप्लीट हो नहीं सकती। इनके बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं और बहुत पॉपुलर दोहे हैं, आप सुन के सिर्फ वाह करेंगे लेकिन उसके समझने की भी जरूरत है। ये भी है कि वैसे मैं टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारे दोहे भी सुना सकता हूँ। उसी तरह से मैं ये चाहूँ कि अमीर खुसरो जो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा फिगर है, सूफिज्म का एक बहुत बड़ा फिगर है, जो उनके और निजामुद्दीन के बीच के जो संबंध है, आप यहाँ पर क्रिएशन की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ क्रिएशन भी अपना एक मकाम रखता है जो अमीर खुसरो के पास था। वो एक ही वक्त में जो है सिंगर थे, पोएट थे, वो राग उन्होंने नए नए राग बनाए हैं, जैसे राग यमन है और फिर ताल है, उसमें ख्याल है, ये सब निर्मिति जो है तो उन्होंने की है उस आधार पर जो उनको सूफिज्म से ये स्पिरिचुअल जो टच था उससे मिली है। जैसे कि हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है तो उसमें ये कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मोते रहना मिलाई के, बहुत खुश होते हैं उसके म्यूजिकल धुन पर, हम बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन उस वर्ड को आप देखिए कि जब वो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मोते रहना मिलाई, ये भाव है, ये किससे है, ये छाप जो है वो तिलक जो हम जो लगाते हैं ये जब छीनी जाती है तो वो उन्मननीय अवस्था में ये छीनी जाती है। जब आप पे रंग तारी होता है तो आपका हाव भाव जो है तो खत्म हो जाता है। तो वहाँ इस तरह का कमीशन है कि मैं जो है तो ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो विरसा है, हमारा जो अचाचा है बहुत रिच है, आप कृपया उसको जानिए, उसकी खोज कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैसे कि राजा राम मोहन राय, वो कोई मतलब स्पिरिचुअल नहीं थे लेकिन सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने एक पर्शिया में जो है तो पर्शिया में एक बुक लिखी थी तोहफतुल मौहिदीन, तोहफा होता है गिफ्ट, मौहिद होता है उसका मतलब वन हू बिलीव्स इन वन गॉड। तो ये सारी चीजें और उसमें बहुत सारी चीजें मॉडर्न इंडिया में उनका भी एक रोल होता है, वो और बात है कि वो किस तरह से वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस थे क्या नहीं थे। दयानंद सरस्वती जी जो वैदिक कल्चर को मानते थे और वो चाहते थे कि जो है तो वैदिक कल्चर का इंट्रोडक्शन ना केवल जो है तो इंडिया में बल्कि पूरे संसार में हो, जिन्होंने आर्य समाज की बुनियाद रखी। और हम विवेकानंद जी का नाम हमेशा गर्व से लेते हैं और उनकी 1893 की जो स्पीच है शिकागो में, हमेशा उसको बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से इंडियन कल्चर को और इंडियन भाव को जो है तो यूरोप के सामने रखा है। इसमें लास्ट में यही बात करूंगा कि उन्होंने इसमें एक ही बात कहा है कि अगर आप किसी मानव की सेवा करते हैं तो क्या आपको ये ऊपर वाले ने ये अवसर प्राप्त करके नहीं दिया कि उसमें मेरी सेवा भी उसमें अंतर्निहित है, वो मेरी सेवा भी उसके अंदर है। ये कहा जाता है सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। आखिर में मैं एक बात बहुत अच्छे से खत्म करना चाहता हूँ कि फिर से मैं फिर गालिब को याद करता हूँ। गालिब शायर नहीं, बहुत बड़ा फिलोसोफर था। गालिब जो है तो वो सूफिज्म में बिलीव नहीं रखते थे लेकिन एक एक शेर जो है तो उनके माने रखते हैं, हमारे को एक सीख देते हैं। वो कहते हैं कि हम मवविद है, हमारा ईमान है सर के रसूम, कि हम बिलीव करते हैं वन गॉड में। हमारा बिलीफ ये है कि जितने भी ट्रेडिशंस है जितने भी है इसको ब्रेक कर दे, इसको खत्म कर दे, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। अगर कोई बुतखाने में मरता है तो उसको काबे में गाड़ना चाहिए। इस तरह की जो एक मॉडर्न एक ख्याल है, एक ना केवल ये चीज आपको बताती है कि भाई आपको किस तरह से जीना है बल्कि एक सिस्टम की स्थापना करना है जो स्वर्णिम भारत की हम आप देख रहे हैं, उसके लिए यही चीजें आपको आगे बढ़ानी है, वो चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के सिवाय ये बात मुमकिन नहीं होती है, तभी जाके आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। मुझे यहाँ पर आपने बुलाकर मेरा सम्मान किया, मुझे जो है तो कुछ बातें अपने तौर पर रखने की जो है अनुमति दी, उसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के इस सारे इंस्टीट्यूशन का उनके कर्ता धर्ता जितने भी पदाधिकारी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू डॉक्टर साहब। और ब्रह्मा कुमारी जो आपने जितने संतों का नाम लिया महाराष्ट्र के और अलग अलग संतों का नाम लिया, सारे का जितने धर्म है सबका समन्वय से ब्रह्मा कुमारी में ही होता है। तो एक बार ब्रह्मा कुमारी के लिए जोरदार ताली। आप आगे जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही उसमें एक फिल्मी गीत है उसको आप लोग आगे पूरा करना। मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि सिर्फ योग की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो उसके लिए कहा गया कि सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। और आगे की लाइन देखो, विनय भाई ने हाथ उठाया, आगे की लाइन आप जोड़ते रहिएगा, बोलिए नहीं। आगे हम आज के लिए, आज के ग्रीटिंग्स देने के लिए आदरणीय नेहा दीदी को आमंत्रित करना चाहेंगे। आप फाउंडर मेंबर हैं स्पार्क के और दीदी मुंबई, जो आपने सभी मुंबई तो गए ही होंगे, ज्यादातर होंगे भी वहीं के। आपने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। आप वर्तमान समय दक्षिण मध्य मुंबई के 8 सेवा केंद्रों का संचालन कर रहे हैं। एक हमारा अवेकनिंग चैनल है, उस पर विधि से सिद्धि नाम का एक सीरीज लेक्चर आपका डेली प्रसारण होता है, बहुत लोग इसका लाभ लेते हैं। दीदी के सानिध्य में थोड़ी बहुत 15-16 घंटे की पालना मैंने भी ली है मुंबई में जाके, और वो अभी भी याद है, उसकी यादें तरह ताजा है। बहुत अच्छे मैनेजमेंट है इनके, बहुत अच्छी पालना है और दीदी तो बहुत अच्छी है ही है। तो एक बार जोरदार ताली से दीदी का वेलकम करते हैं। आदरणीय नेहा दीदी,
सर्वशक्तिवान शिव पिता की अति विशेष संतान हमारे मन चाहते विशेष अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सभी विशेष मेहमान, आज की ये सुंदर सभा जिसमें आज आप सब जो विराजित हो वो महान आत्माएं हो जिसको प्रभु पिता की ओर से विशेष शक्तिशाली बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है, जिस बुद्धि बल के द्वारा ही स्वर्णिम भारत की रचना करने का कार्य अति सरलता से और तीव्र गति से संपन्न हो सकता है। इसीलिए तो भगवान के पास हमेशा कहते हैं प्रभु सब बुद्धि देना। यहाँ परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि बच्चे हमेशा अपनी बुद्धि को शालीन रखना, क्योंकि यही हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट जिसके द्वारा ही हम परमात्मा प्यार का भी अनुभव कर सकते हैं, नई नई रिसर्च कर सकते हैं और समाज को भी नया बना सकते हैं। भगवान को कहते हैं बुद्धिवानों की बुद्धि, तो यहाँ सिर्फ यही हमें करना है जो आप पिछले 3 दिनों से सुन रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो, कि सिर्फ अपनी बुद्धि को उस बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ जोड़ देना है। इसे ही राजयोग कहते हैं, इसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, इसे ही प्रभु प्यार कहते हैं। हमारे इस वेलिडिक्ट्री सेशन की शुरुआत में बहुत सुंदर आज एक गीत बज रहा था, देते चलो प्यार देते चलो, प्रभु प्यार को बांटते चलो। तो हमें तो यहाँ बैठे हुए यही बात महसूस हो रही थी कि हमारे सभी रिसर्चर जो अपनी बुद्धि की एकाग्रता से जो नई नई इन्वेंशन करते हैं, ये बुद्धि जब उस पिता के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो उस पिता के द्वारा नई नई प्रेरणाएं मिलेगी। ऐसा रिसर्च होगा जिसकी आज के इस चैलेंजिंग समय में आवश्यकता है, और साथ साथ ऐसा प्रभु प्यार मिलता जाएगा जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। कहते हैं ना, प्यार प्रेम एक ऐसी मन की बुद्धि की स्थिति है जिसमें आत्मा संतुष्ट हो जाती है, और फिर जो कार्य होता है वो कार्य भी ऐसा शक्तिशाली होता है जिससे अनेक आत्माओं को उस प्रभु प्यार का अनुभव होता रहेगा। तो आज हम सभी मिलकर के यहाँ यही दृढ़ संकल्प करेंगे कि इस बुद्धि को हम डिवाइन इंटेलेक्ट बना दें, और यही डिवाइन इंटेलेक्ट गजब से कार्य कर सकती है। भगवान इसलिए यहाँ पर आए हैं और आप सभी विशेष मेहमानों को अपने घर पे बुलाया है, इसलिए कि अपनी बुद्धि के द्वारा मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे से सारी प्राप्तियां और अनुभूतियां करके स्वयं को भी भरपूर करो और समाज को भी भरपूर करके जल्दी से जल्दी वो स्वर्णिम भारत की रचना करनी है। तो यही दृढ़ संकल्प के साथ हम यही शुभ भावना रखते हैं, आओ हम सब तो प्रभु प्यार से भरपूर हो जाएं, तब हमारे रिसर्च का कार्य भी कार्य नहीं रहेगा, वो एक प्रभु प्राप्ति का, प्रभु मिलन का और जीवन को भरपूर करने का समय बन जाएगा। यही शुभ भावना के साथ कि भगवान की इन आशाओं को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी ने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। सबसे अच्छी बात जो हम सबको यहाँ से ले जाने लायक वो है कि अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़कर हम डिवाइन बनाएं। तो आप सबकी बुद्धि दो दिन में डिवाइन तो हो गई होगी। कितने भी आए हैं हमारे गेस्ट मेहमान, हाथ उठा के बताएंगे प्लीज। दीदी को आश्वासन तो दो कि भाई हमारी बुद्धि डिवाइन हो चुकी है, हम भी बस आपके लेवल में आने वाले हैं। ताली बजाएंगे एक बार, बहुत अच्छा। और आज के हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट प्रोफेसर राजकुमार हमारे बीच में हैं। आप वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। सुबह बनारस, कानपुर देहात, इनका मैं बायोडाटा पढ़ रहा था तो सारा यूपी में एक बार में घूम आया कि कोई भी यूपी का शहर छूटा नहीं है। बहुत अच्छे से एक एक जगहों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो सबसे पहले भाई साहब का बायोडाटा मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा। करेंटली द वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ही कम्प्लीटेड हिज पीएचडी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड डीडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। साथ में ही इज अ चेयरमैन ऑफ वेरियस डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन सच एज अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन एंड नॉलेज क्लस्टर, रीजनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एस सी एंड एस टी. ही इज अ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली. ये सारे तो भाई साहब के डिजिग्नेशन हैं वहाँ के जो साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में आप आए और यहाँ पर परमात्मा के घर में भी आपको एक बहुत सुंदर परमात्मा ने डिजिग्नेशन दिया, आपको यहाँ बुलाया, और हम सब जोरदार ताली से भाई साहब का वेलकम करेंगे कि इतना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे हैं प्रोफेसर राजकुमार जी.
धन्यवाद भाई साहब. मंचासीन भाइयों एवं बहनों, हमारे सामने इस सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों और ब्रह्मा कुमारी परिवार से संबंधित तमाम सारे भाइयों एवं बहनों, आपको प्रणाम एवं नमस्कार. जी, जैसा कि भी बताया गया कि मैं एक एकेडमिशियन हूं और जो जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है और एक शिक्षक एडमिनिस्ट्रेटर की होती है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं. आज का जो विषय आपने चुना है उसके बारे में, इसका जो अप्लाइड पार्ट है, प्रायोगिक जो पार्ट है, उस पर जो है बात करने की जरूरत मैं समझता हूं, क्योंकि यहां पर अब तक जितने भी लोगों ने अपने वक्तव्य दिए या जो विचार व्यक्त किए उनको सुनने और उनको समझने के बाद, और करीब 38 इयर्स की शैक्षिक यात्रा पूर्ण करने के बाद उनको जो समझ में आया उसको मैं आपको एक 15 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा. सबसे पहली बात तो आज हम अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये 75 साल की आजादी के बाद जो है इस तरह का पूरे इंडिया में हर जगह प्रोग्राम हो रहा है. इसके लिए जो है हमें वर्तमान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहिए. अब ये प्रश्न उठता है कि 75 साल के बाद इतने लार्ज स्केल पर और ब्रह्मा कुमारी जैसे सेंटर पर ये स्पिरिचुअलिटी रिसर्च की बात क्यों की जा रही है, तो इसका बैकग्राउंड जो है मैं समझने की कोशिश किया और हमको उस बैकग्राउंड के पीछे जो है तमाम सारे चीजें नजर आई जिसको मैं एक 2 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं. जब आदमी थक हार जाता है, पराजित हो जाता है, तब जो है वो आज का आदमी विशेष रूप से, क्योंकि ये जो है भौतिक युग है और भौतिक युग में जो है केवल साइंस टेक्नोलॉजी विकास डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात की जाती है. आज का चूंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं और मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के छात्र जब भी किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि यहां पर जो है सैलरी पैकेज क्या होगा. फीस के साथ साथ सैलरी पैकेज भी जानने की कोशिश करते हैं, उनको जानना भी चाहिए. तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज का युवा, आज का जो आज की जो पीढ़ी है पूर्ण रूप से भौतिकवादी परिदृश्य में और भौतिकवादी जो भी संस्कृति है उसके साथ चलने के बारे में सोचता है. और एक लेवल के बाद जब उसके अंदर जो है तमाम सारी मुसीबतों से उसका सामना होता है तब इसके बाद वो जो है आध्यात्म की तरफ बढ़ता है. अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक मात्र 25-26 साल का बच्चा जो है वो नहीं कुछ तो 45-48 लाख के पैकेज पर जो है उसको बड़े अगर अच्छे IIM से किया है, IIT से किया है तो उसको पैकेज मिल जाता है. और आप यकीन मानिए अगर 22-23 या 24 साल के बच्चे को अगर 75 75 लाख 48 लाख या 50 लाख का पैकेज मिल जाए तो क्या सोचता होगा, किस दुनिया में? उसको तो समझ में नहीं आता क्योंकि मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ, उसको तो समझ में नहीं आता ये पैसा खर्च कहाँ से होगा। तो जितने जो है इस समय भौतिकवादी साधन है उनको जो है उनके बारे में भी सोचना शुरू करता है कि महंगी गाड़ियां होनी चाहिए, महंगा जो है जीवनचर्या होनी चाहिए, महंगे संसाधन होने चाहिए, और ये सब उसका काम ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल चलता है। 7-8 साल के बाद उसके जीवन में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है। और वो फ्रस्ट्रेशन कैसे आता है, एक तो बाहरी दुनिया को देख करके उसको फ्रस्ट्रेशन आता है, एक वो अपने में खुद टूटना शुरू होता है। अपने में कैसे खुद टूटना शुरू होता है, उसके सामने सबसे पहले जो है हेल्थ इश्यूज आने शुरू होते हैं, डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, टेंशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, डिप्रेशन। जब ये सब चीजें उसके सामने आने शुरू होती हैं, तब वो जो है असली जीवन की तलाश के बारे में सोचना शुरू करता है। और जब असली जीवन के बारे में तलाशना शुरू होता है तब उसको स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, क्योंकि वो जो है उसका सारा दिमाग जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ होता है, तो स्पिरिचुअल तब होना चाहेगा जबकि उसको साइंटिफिक चीजें जो है स्पिरिचुअलिटी में देखने को मिलेंगी। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि आप जो है इस तरह के परिवेश को समझने के लिए अपने बच्चों को बहुत पहले से ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना शुरू करिए कि एक लेवल के पास जा करके, यानी कि करीब 45 साल की उम्र के बाद जो है जबकि उसके जीवन का स्वर्णिम समय होता है, तब वो जबरदस्त डिप्रेशन की स्थिति से, फ्रस्ट्रेशन और तमाम सारी जो है दोषों से दो चार होता है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के कारण मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये अपने बच्चों को एक सामान्य उम्र के साथ, हमारा ये कहना है कि उनको जो है 5 साल की उम्र या 3 साल की उम्र, जब वो सोचना समझना थोड़ा सा शुरू करें, तभी से उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की बातें आप ले आइए। और जब आप उनको इस तरह की जब नरिशमेंट आप देंगे, नर्सिंग करेंगे, तो यकीन मानिए उसके जीवन में, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, पेंटिंग करे, नृत्य करे, लिटरेचर करे, कोई भी जो है सब्जेक्ट पढ़े, यकीन मानिए उसके अंदर जो है इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आएगा। दूसरी चीज मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे में आपको जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताना है। वो बच्चा भले ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, किसी भी जो है माध्यम से पढ़े, हम किसी भाषा या किसी जो है किसी डोमेन के हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि उनको जो है भारत और भारतीयता के बारे में आप जरूर बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यूपी से हूँ और आपको जानकारी होनी चाहिए कि पंजाब इतना संपन्न जो है अपना राज्य है, लेकिन वहां पर तकरीबन 25,000, हमें ऐसा बताया जाता है 20 से 25,000 युवक जो है हर साल पंजाब छोड़कर के जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। क्यों बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं? मैंने कई पेरेंट्स से जब उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ पर ड्रग्स का जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमें इस बात की पूरी आशंका है कि हमारा बच्चा कहीं जो है ड्रग की जद में न आ जाए, ड्रग की लपेटे में न आ जाए, इसलिए हम अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। एक तो देखिए कितना 20,000, अगर आप किसी राज्य के 20 से 25,000, 30,000 बच्चे जाएंगे तो हमारे देश की कितनी बड़ी जो है आउटफ्लो ऑफ द कैश होगा, कितना बड़ी संपदा जो है हमारी जो है विदेश में जा रही है, नंबर वन। और जो बच्चा जो है विदेश में जा रहा है उसके फीस को देने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए पेरेंट, हर पेरेंट्स तो जो है उसके पास इतनी आमदनी है नहीं, तो क्या करता है वो जमीन बेचता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था पर, राज्य की अर्थव्यवस्था पर जो है वो दोहरी मार पड़ रही है, जबकि इसके मूल कारण जो है जो हमको समझ में आया वे जो है पेरेंट्स है। पेरेंट्स अगर उनको इस तरह की नरिशमेंट दें, इस तरह का संस्कार दें, इस प्रकार की आध्यात्मिकता की तरफ उनको मोल्ड करें, तो हम यकीन मानिए कोई बच्चा विदेश नहीं जाना चाहेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों में आप बड़े ही औसत आयु से उनके दिमाग में आप जो है जो ज्ञान आप लाइए, जो ज्ञान की आप बात करें, उनके अंदर जो है भारतीय ज्ञान की बात जो है जरूर होना चाहिए। और भारतीय ज्ञान में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि उनको ये आप बताएं कि जो है एक दूसरे से प्रेम करें। लव इज द ओनली थिंग ऑन द अर्थ बाई विच यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर हेट का कोई दुश्मन है तो वो लव है। और आज का जो समाज जो डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है, सोशल डिसहार्मनी हो रही है, उसका मुख्य कारण जो है हमारे आप में भाईचारे की कमी है। और वो भाईचारा केवल जो है तीन लोग ही पैदा कर सकते हैं। एक जो है होता है माँ बाप सर्वप्रथम, और दूसरा जो है वो गुरु होता है। दूसरा गुरु होता है, गुरु की भूमिका चाहे वो अध्यापक के रूप में हो, चाहे आप जैसे संस्थाओं के रूप में हो, तमाम सारे आश्रम है, तमाम सारे आप लोग जैसी संस्थाएं हैं, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि आपको इस प्रकार की जो हमारे समाज में जो विकृति पैदा हो रही है, आप जैसे संस्थाओं को अब जो है चल करके, इन आश्रमों से चल करके स्कूल कॉलेजेज और विश्वविद्यालय तक आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी जो एक छोटा सा यूनिट इनका हमारे चंडीगढ़ में है, मैं बराबर वहाँ के लोगों के संपर्क में रहता हूँ और उनसे मैं बराबर ये निवेदन करता रहता हूँ कि हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पर जो है ब्रह्मा कुमारी के जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ के स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, इनके बारे में जरूर बात होनी चाहिए। बच्चे आजकल के बच्चे जो है आप तक नहीं आएंगे, और हम तो उन यहाँ पर बच्चों को हम देख रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और उन माँ बहनों को या जो पिता और माताएं हैं उनको तो मैं धन्य मानता हूँ कि उनके बच्चे यहाँ तक आते हैं। आप अपने किसी बच्चे को यहाँ ले आकर के देखिए, वो दूसरी जगह जाना शुरू अच्छा समझेगा, न कि जो है इस तरह के जो है इस तरह के आश्रमों में। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप इस तरह की स्पिरिचुअलिटी वाली शिक्षा एक बचपन से उनको देना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि वे चीजें आगे चलकर और ज्यादा जो है उन्नत होंगी। एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बच्चों में प्रेम के साथ जो दूसरा गुण होना चाहिए वो सैक्रिफाइस का होना चाहिए। आज का बच्चा, आज के माँ बाप केवल मेरे, मैं और मेरे तक ही उनकी दिनचर्या खत्म है। वे जो है ना ही अपने पड़ोसी के बारे में बच्चों को इतनी तरह से बताते हैं, ना अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में, ना ही अपने रिलेटिव्स या उनके जो इष्ट मित्र हैं। तो जब आप अपने बच्चे को जो है सामान्य स्थिति में ही एक पैरोकियल थिंकिंग के दायरे में ले आ रहे हैं, तब आप उससे अच्छे नागरिक होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तो हमारा ये मानना है कि बच्चे को ज्ञान, भारतीय ज्ञान, प्रेम, और आप सैक्रिफाइस करने की यानी कि कुछ देने की प्रवृत्ति जरूर आप जगाइए। अगर ये तीन लक्षण बच्चों में आ जाएं, तो आप यकीन मानिए कि आप एक बड़े बड़े सफल माँ बाप हैं, एक बड़े सफल पेरेंट्स हैं। और अंतिम बात मैं आपके सामने करना चाहूंगा कि आप ये देखें कि आप समाज के लिए क्या दे सकते हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आदमी को खुद में संतुष्ट होने की जरूरत है, लेकिन जब तक आप देने की प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं ले आएंगे, यकीन मानिए आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। आशाओं का, आकांक्षाओं का, आवश्यकताओं की कोई भी लिमिट नहीं है। वह लिमिट तब खत्म होती है जबकि आप देने की प्रवृत्ति अपने अंदर ले आ सकते हैं। और आप भाग्यशाली हैं कि इतने पवित्र परिसर में आपको आने का मौका मिला है। हम इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बच्चों को, क्योंकि हमारा यही कहना है, आप आएंगे आपकी यात्रा बहुत पूर्ण सफल नहीं होगी जब तक आप अपने बच्चों को किसी आश्रम से इस तरह के तमाम सारी जो कैरेक्टर मेकिंग जो संस्थाएं हैं वहां पर जोड़िए। तो आप जो सशक्त भारत, समर्थ भारत और महान भारत की कल्पना कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ही साकार होकर के आपके सामने आएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि इसी को दुनिया में कहा जाता है, पहले गुरुकुल परंपरा थी जहां पर 7 से लेकर 25 साल तक बच्चों को रखा जाता था, वहां पर सिर्फ ध्यान सिखाया जाता था, वहाँ कोई डिजिटल कुछ भी नहीं था, सिर्फ ध्यान सिखाते थे कि बच्चा आगे चल के सारा कुछ करे। और ब्रह्मा कुमारीज में भी सिर्फ ध्यान सिखा रहे हैं प्रोफेसर साहब, यहाँ जैसे कहते हैं आप ध्यान से किसी पर गुस्सा करो, ध्यान से हम किसी पर गुस्सा नहीं कर सकते, ध्यान से हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है, मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार से हम सच में भारत को स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। तो भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजे, बहुत सुंदर। और हमारी कुमारी रिमझिम तैयार हैं, आप आइए ताली बजा इनका। बिल्कुल, आप सभी ताली बजाते रहेंगे, बच्ची काफी देर से थक गई होगी, तो आप सबके तालियों के साथ ये डांस करेंगे।
जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों बहुत प्यार मिला है,
प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है,
प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है,
प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है।
बहुत खूब बहुत खूब। काफी देर से इंतजार करते करते थक गई थी, तो एक बार आपने ताली बजाकर इसका अच्छे से वेलकम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कोरोना काल गया तो आज मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारी अंबिका दीदी, हमारी नेहा दीदी से परमिशन भी ले रहा हूँ, क्योंकि कई बार एक फ्रंट में काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, बैक वालों को ज्यादा लोग जानते नहीं, और बहुत समय के बाद आज हमारे साथ हमारे सामने मंच पर हमारे श्रीकांत भाई बैठे हैं, तो आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल सोचा बोलूं। और ये जो हमारे स्पार्क विंग है इसकी इसको पुरजोर तरीके से चलाने का काम श्रीकांत भाई जी कर रहे हैं। कोरोना काल में एक स्थिति ऐसी थी कि जिंदगी चल रही थी कुछ ऐसे मुकाम से कि लोगों ने दूरियां बना ली, थोड़े से जुकाम से हल्की सी जुकाम हो जाता था, लोग एक दूसरे से अलग हो जाते थे। तो श्रीकांत भाई का मैंने देखा कि उसमें वो भट्टी और सारी चीजें उन्होंने शुरू की, डेली हमारे पर मैसेज आता था और बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज करते थे। ये मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं और लंबाई में भी बड़े हैं। ये तीनों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे आप ये वाली हाइट देखेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन इनकी जो इस पार्क की ऊंचाई है बहुत ऊंची है। एक बार ताली बजाकर भाई साहब का वेलकम करेंगे। श्रीकांत भाई साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो इनके लिए एक बात है कि हालात के कदमों पर कभी कलंदर नहीं गिरता। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी शायरी है और इनके लिए स्पेशल है कि हालात के कदमों पर कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और ऐसे हमारे श्रीकांत भाई हैं क्योंकि ये दिल के इतने ऊंचे इतने श्रेष्ठ हैं और हम सबको आगे बढ़ाते हैं। आप सब ये मत सोचना कि इनकी तारीफ कर रहा हूँ कि दोबारा मुझे बुलाएं, मैं सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि कभी ऐसे मौका नहीं मिला। तो एक दूसरी बात और इनके साथ जोड़ना चाहूंगा कि रात को चांद बनो, दिन हो तो दिनकर बनो, दुख में अंबर बनो, सुख में धरती बनो, नित्य करते रहो उत्तरोत्तर प्रगति, आज दरिया हो तुम कल समंदर बनो। तो भाई साहब के लिए जोरदार ताली। हमारे श्रीकांत भाई एक्शन प्लान लेकर आ रहे हैं आपके बीच में।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा मंचा सिंह सम्मानीय अतिथि, हमारी सभी बड़ी बहनें, लगभग 3 दिनों से आप सभी हमारी बीच में सभी बड़ों को सुन रहे हैं सवेरे से लेकर शाम तक। मैं आप सबके सम्मुख एक्शन प्लान प्रेजेंट करने से पहले 2-3 बात सुनाना चाहूंगा। आज हम जो सभा में बैठे हैं इसकी शुभ संकल्प शुभ प्रेरणा जो 4 आत्माओं से निकली थी, जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, उनके नाम जरूर लेना चाहूंगा। सबसे पहले इस विंग की जो स्थापक हैं, चेयरपर्सन आदरणीय रमेश भाई जी, जिनकी स्पार्क ब्रेन चाइल्ड है, संकल्प है, सब कुछ है, तो 2006 में हम आपस में मिल रहे थे कोर टीम के साथ, तो उन्होंने संकल्प दिया कि 2000 में उनकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ, और उनको रमेश भाई जी प्रेस पार की गतिविधि और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी जो साइंटिफिक एप्लीकेशन की तरफ तरीके से सेवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है उन्होंने एक्सटेंड किया, और 2000 और 2001 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सजेस्ट किया कि आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसकी साइंटिफिक एप्लीकेशन आप तो कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी तरीके से, इसको साइंटिफिक एप्लीकेशन करिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम करिए इसमें देश विदेश के जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, जिनकी लाइक माइंड है कि वो स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च करें, उनको बुला करके एक संगठन करें, सम्मेलन करें। और 2001 के संकल्प और उसके बाद हमारी संस्था के प्रमुख आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी से मुलाकात हुई और उनकी भी संकल्प लिया, और उनकी अव्यक्त होने के बाद दादी जानकी जी जो हमारी संस्था की प्रमुख बनी उनके साथ भी क्लोज मीटिंग हुई। इन सभी वरिष्ठ दादियां और बड़े हमारे देश की वैज्ञानिकों के सहयोग से और संकल्प से 2007 से हम स्पिरिचुअलिटी रिसर्चर इस थीम के अंतर्गत जो रिसर्च फील्ड के महानुभाव है उनको बुलाते हैं, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और हम स्पिरिचुअल फील्ड के जानकार हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक संकल्प था कि आप दोनों को लेकर कार्य करो, और जिसके फलस्वरूप आज हम सभी अलग अलग समय पर आज इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, आगे भी करेंगे, आप सभी आएंगे। तो आप सबके सहयोग से 2008 के बाद पार्क विंग ने एक उपलब्धि हासिल की, विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके इफेक्ट ऑफ राजयोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल डे टू डे लाइफ में हमें कैसे मदद कर रहे हैं अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, उस पर रिसर्च को ओपन किया, और ऐसे कई संस्थाएं हमसे मिल करके रिसर्च किया, अभी कर भी रहे हैं। तो ये आज की जो हम ये समापन सत्र में है, और 3 दिन से आप सबसे सुना, कई रिसर्चर हमसे पर्सनली मिले और कई जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स मिले, आप सबके सुझाव को लेकर के पिछले जो कारोबार हुआ था उस रिसर्च को आगे हम 2022 और 23 में क्या करने जा रहे हैं वो आपके सामने पीपीटी के माध्यम से हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। और आप सबसे निवेदन है, आप सबको, अगर आप हमारे उद्घाटन सत्र में थे तो आदरणीय अमरीका दीदी जी ने आप सबको आह्वान किया था कि हम स्पार्क की तरफ से मिलकर के रिसर्च प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो आप यहाँ लाभ ले रहे हैं ये लाभ अन्य आत्माओं तक पहुंचे, उसके बेस्ट तरीका है रिसर्च को बढ़ावा देना। और रिसर्च एक व्यक्ति अपने आप में नहीं कर सकता है, उसमें एक कोलाबोरेशन की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन का ही लक्ष्य है, इस सभा में जो भी रिसर्चर महानुभाव बैठे हैं या आपके इंस्टीट्यूशन को लीडिंग करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग करते हैं, तो आप हमारे ये निवेदन है कि आप अगर 5 से मिलकर के जो प्रेजेंटेशन के आधार पर बताया जाएगा मिलकर कार्य करना चाहते हैं, आपका निमंत्रण आप हम आह्वान करते हैं। और इस सेशन के बाद हम यहाँ इस डायमंड स्टेज के पीछे मीटिंग रूम में आधा घंटा आप सबसे मिलना चाहेंगे, ताकि आपके विचार सुनकर के आगे क्या मिलकर के रिसर्च कर सकते हैं उसको आगे बढ़ा सकेंगे। 2007 से लेकर अब तक जो हमने कॉन्फ्रेंस किया था, आप सभी एक्सपर्ट रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के साथ मिलने के बाद हमने जो एक डेवलपमेंट किया था, ये 5 पॉइंट में बोलना चाहूंगा। आप सबकी जो भी हम स्पीकर्स को सुनते हैं, रिसर्चर्स साइंटिस्ट अपने प्रेजेंटेशंस देते हैं, उसमें 5 पॉइंट हम हर कॉन्फ्रेंस में नोट करते हैं और जिसको लेकर के आगे की इस पार के रिसर्च प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल गाइडलाइंस इन स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च। जैसे मैंने कहा कि हम स्पिरिचुअल फील्ड के हैं और आप साइंस फील्ड के हैं, और हमें परमात्मा ने सिखाया है, जो हम कॉन्फ्रेंस की थीम रखा है, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च ए होलिस्टिक अप्रोच टू बिल्ड स्वर्णिम भारत। सतयुग निर्माण में परमात्मा ने हमें सिखाया है कि जब तक साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का समन्वय नहीं होगा, ये संसार स्वर्ग नहीं बन सकता है। अरे साइंस स्पिरिचुअलिटी तभी दोनों मिल सकते हैं जब एक कॉन्सेप्ट पर दोनों मिलकर के कार्य करने के लिए राजी हो। और सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की लाइफ में उसकी कितनी आवश्यकता है, उसे समझना। और इसमें रिसर्च के आधार पर हम दोनों मिलते हैं। और सेकेंड है एक्टिव कोलाबोरेशन एंड MOU विथ रिसर्च एंड एकेडमिक। प्रोफेसर राजकुमार जी हैं, आपसे बहनें मिले थे और सुशील भाई भी मिले थे। जैसे आपने भी एक इच्छा जताया है कि ब्रह्मा कुमारी और आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे हम बनाए जिसमें रिसर्च को आगे बढ़ाए, तो इस पर भी हम प्लानिंग किया है और इस सभा के बाद आपसे मिलेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे। जैसे आप उसको हम परमिशन देते हैं आगे की रिसर्च एक्टिविटीज को आपके साथ मिलकर करना चाहेंगे। थर्ड है साइंटिफिक सेशंस एंड मेडिटेशन फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टीज फॉर वेरियस इंस्टीट्यूशन। कोविड पीरियड में कई रिसर्च लीडर्स का जब बातचीत हम कर रिसर्च लीडर्स से बातचीत कर रहे थे, सबने सजेस्ट किया कि अभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहे क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन कोर्सेस में ज्यादा जब मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उनके अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो स्पार्क की तरफ से एक सुंदर मॉड्यूल डिजाइन किया गया है, डेवलपिंग रेजिलियंस एमंग UG एंड PG स्टूडेंट। और इसको हमने प्रयोग भी किया है MIT यूनिवर्सिटी की जो कलकत्ता ब्रांच के साथ, रिजल्ट काफी इफेक्टिव है। बहुत कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो भी पार्टिसिपेट किए थे उनकी स्टूडेंट पढ़ाई लाइफ में मेडिटेशन और रेजिलियंस की इफेक्ट हम देखा है। और फोर्थ है एग्जीबिशन फॉर अवेयरनेस ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट मेडिटेशन एंड जनरल पब्लिक। पार्क की ओर से एक छोटा सा एग्जीबिशन डिजाइन किया गया है जिसमें साइंटिफिक तरीके से ब्रह्मा कुमारी की स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक और एक बिहेवियर इंटरेक्टिव तरीके से समझाया जाता है। ये भी हम जो भी यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस में एग्जीबिशन रखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक्टिविटीज के द्वारा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ पढ़ाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ है ट्रांसलेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एज पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन। पार्क की ओर से वेरियस रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन मिलकर के जो रिसर्च किए हैं, हम कई पब्लिकेशन भी किए हैं जो स्पार्क की कोलाबरेटिव इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल मल्टीवर्सिटी यूनिवर्सिटी, सेकेंड मेडिकल इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग माइल लैब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेंटर फॉर न्यूरो साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, DRDO के 3 लाइफ साइंसेस लैब, और 2 ऐसे इंटरनेशनल कोलाबोरेशन हमारा भी है। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है द की इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन माइंड रिसर्च, जिनके साथ मिल करके पिछले 2 वर्षों से मेडिटेशन की जो प्रभाव है ब्रेन की अलग अलग नेटवर्किंग पर क्या होता है उसकी स्टडी किया जा रहा है। रिसेंटली लास्ट 2 ईयर से हम एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। कोविड की वजह से वो प्रोजेक्ट कुछ दिन के लिए स्टे था, लेकिन आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोना, मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी, उनके साथ मिल करके हम प्रोजेक्ट बनाया है। पिछले अगले 3 महीने के अंदर उसमें आगे कारोबार करना चाहेंगे। उसमें अगेन वही बात है, पीजी और यूजी स्टूडेंट के अंदर कैसे हम रेजिलियंस को डेवलप करें, उसके प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। और साथ साथ और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। एम्स पटना की जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर हम कार्य करते हैं, और साथ साथ निमहांस के जो न्यूरो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज, उनके साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। ये कुछ नाम हमने बताया है जिनके साथ मिलकर स्पार्क मेडिटेशन की इफेक्टिव जानने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आप सभा में जो बैठे हैं, और अगर आप हमें इस फील्ड में हेल्प करना चाहते हैं कि हम मिलकर के कुछ करें, जो स्वर्णिम भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं कर सकते, मिलकर के करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्पिरिचुअल है चाहे साइंटिफिक है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो 3 फेज में हम कोलैबोरेट करना चाहेंगे। एक ब्रिंग आउट द कॉन्सेप्ट पेपर बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज इन योर फील्ड अलोंग विथ योर एक्सपर्टीज इन स्पिरिचुअलिटी। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कोलैबोरेशन का, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स विथ स्पिरिचुअल इंटरवेंशन इन योर फील्ड। थर्ड है डेवलपिंग प्रैक्टिकल मेडिटेशन मॉड्यूल फॉर एकेडमिक रिसर्चर। ये 3 जो ऑब्जेक्टिव लेकर हम आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं। इस सभा के बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक सिटिंग रूम है, हम आपसे मिलना चाहेंगे। आदरणीय अंबिका दीदी भी रहेंगे, प्रोफेसर राजकुमार जी, और जो भी आप आएंगे, आपसे थोड़े समय की डिस्कशन होगा, और जैसा विचार देंगे हम उसको आगे प्रॉपर एक्शन प्लान बना करके आपसे फिर फ्यूचर कम्युनिकेट करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये थोड़े समय के अंदर मैं अपनी मैसेज को कम्युनिकेट कर पाया, तो आपकी जैसे सहयोग होगा हम सभी मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दादी जानकी हमेशा कहा करती थी, हारमोनी से सत्य गाएगा, और उन्होंने यही कहा था कि हारमोनी अर्थात हार माने। हम अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए सामने रखें और सभी मिलकर के कार्य करें, हम मिलकर के इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आगे आप सबसे मिलकर के कार्य करना चाहेंगे। ओम शांति।
थैंक यू श्रीकांत भाई साहब, आपने एक्शन प्लान रखा, और जो भी मिलना चाहते हैं बाद में आप मिलेंगे। और एक सूचना है, डायमंड हॉल के पीछे जो 9 नंबर गेट है वहां पर कुछ स्पार्क की रिसर्च बुक उनको डिस्प्ले किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं और ले भी सकते हैं, देख सकते हैं प्लस ले भी सकते हैं। अभी काफी देर से आप बैठे हैं, तो जो एहसास की बात हमारे फयाज साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब, उस एहसास को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करने के लिए मैं आदरणीय अलका देवी जी को बुलाना चाहूंगा। राजयोग मेडिटेशन के लिए अलका दीदी महाराष्ट्र रीजन कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग की, और कल्याणकारी शिव पिता के संतान, कल्याण सेंटर को संभालने वाली। तो दीदी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सब ताली बजाकर दीदी का वेलकम करेंगे। और थोड़ा सा एक बार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि योग करने के बाद काफी देर से निद्रा योग वाला योग ना हो, और बाद में योग करने के बाद आप ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि योग के बाद ताली बजाने का सिस्टम नहीं है। थैंक यू, एक बार टाइट कर लें अपने हाथ को ऐसे, अब थोड़ा सा ऐसे छू लें आसमान को, बस ऐसे ही रहना है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे और दीदी आपको राजयोग मेडिटेशन 5 मिनट कराएंगे।
ओम शांति। सम्मानित मंच और सभा में सभी उपस्थित भाई बहन, आप सभी विशेष सुबह जो मेडिटेशन का सत्र होता है वो दो दिन से सुन रहे होंगे और उसमें आपको पता चला होगा कि यहाँ हम किस लिए आए हैं और हमें उसकी कितनी आवश्यकता है और समय के अनुसार जिसकी महसूस हम कर लेते हैं उसमें हम रुचि रखना आरंभ करते हैं। तो समय के अनुसार हमें आवश्यक है अपने मन को अपने बुद्धि को रिलैक्स रखना, पावरफुल रखना, क्योंकि उस समय बहुत सारे कार्य करवाने हैं और जब हमें किसी से कार्य करवाना होता है उसको बहुत प्यार देना होता है तो हमें अपने आप से भी प्यार की आवश्यकता है और उस प्यार के सागर के साथ हमें सभी को जुड़ने की भी आवश्यकता है। उस समय के लिए हम स्वयं को स्वयं देखें। मैं आत्मा आई टॉप लाइट प्रकाश का पुंज हूं, मेरे प्यारे शिव पिता ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकार प्यार के सागर, सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के विचार, जो आत्मा को देने के लिए उन्होंने खुले कर दिए, परमात्म प्यार और शक्तियों का छत्र इस संसार के रूपी कर्म क्षेत्र पर कर्म करते भी मेरे लिए सुरक्षा कवच है, छत्र छाया है। परमात्म ज्ञान मुझे सच्ची राह बताता है, परमात्मा का साथ सदैव अनुभव करते हुए अपनी श्रेष्ठ कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए इस संसार को स्वर्णिम संसार बनाने के लिए मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। प्यारे शिव बाबा, मैं आपका बच्चा हूं। इस श्रेष्ठ संकल्प को संपूर्ण रूप देने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। बस सुख देना सुख लेना और सुख में संसार बनाना, इन्हीं संकल्पों के साथ हम सदैव अपने आप को कर्तव्य दक्ष रखें। ओम शांति शांति
थैंक यू दीदी, आप हम सबको उस ऊंचाई पर ले गए। महाभारत में एक ऐसे शख्स को आप सभी जानते हैं जिन्होंने पूरे महाभारत युद्ध का वर्णन किया किसी के सामने, और जिसके सामने वो युद्ध का वर्णन कर रहे थे उनको क्योंकि मोह बहुत था और मोह इतना ज्यादा होने के कारण वो बीच बीच में उनको डांट भी लगाते थे कि तुम मेरे पक्ष में बात क्यों नहीं कर रहे। उनका नाम था संजय। लेकिन संजय एक ऐसे इंसान, संजय एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से उनके सामने रखी और जो सही था वही बोला। उस दूरंदेशी बुद्धि को प्राप्त करने वाले हमारे बीच में भी एक संजय भाई बैठे हैं जो हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और मैंने इनको बड़े ध्यान से सुना है तो इनके बड़े नब्बे तुले उछलते हुए शब्द होते हैं, बहुत आराम से एक एक ठहराव के साथ एक एक शब्द को बोलते हैं और जो इनको कहना होता है जो सही होता है वही कहते हैं। इस विशेषता को देखते हुए लगा कि शायद उस संजय की आत्मा यहाँ तो नहीं आ गई, तो संजय भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। वोट ऑफ थैंक्स के लिए भाई साहब को हम आमंत्रित कर रहे हैं, आपके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत ही माइल्ड हैं भाई साहब। इसके बाद सेशन समाप्ति की ओर है, लेकिन आप सभी जो कल का सेशन होगा उसको जरूर अटेंड करेंगे और भाई साहब को बड़े ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सो मच।
ओम शांति। आप सब एक बार बोलेंगे ओम शांति, थके तो नहीं है? हाथ खड़ा करके बताएं, जो थके हैं वो हाथ खड़ा करें और जो नहीं थके हैं वो। पिछले चार दिनों की हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेडिटेशन रिट्रीट में भाग ले रहे हैं। बहुत सुंदर स्थान और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। दुनिया में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं पर मन बुद्धि की शक्ति को बढ़ाए, हमारे अध्यात्म बल को बढ़ाए, ऐसे कार्यक्रम संसार में बहुत कम मिलते हैं। पर एक समझदार व्यक्ति की समझदारी इसमें ही होती है कि ऐसे कार्यक्रमों को जरूर अटेंड करे और पूरी तरह अटेंड करें। पिछले चार दिनों से ये जो एनुअल मीटिंग, मेडिटेशन रिट्रीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका आज समापन है। हम सब समापन सत्र में बैठे हैं और उस सत्र का भी अब लगभग समापन होने जा रहा है। उसके अंतिम चरण में हम बैठे हैं और मुझे कहा गया है वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम अपने मेहमानों का और आप सबका धन्यवाद करें। तो इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद करना चाहूंगा। कोई भी कार्यक्रम हो उसको करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन उसकी सफलता किसके हाथ में होता है? किसके हाथ में होता है? बिना परमात्मा के दुआ के, उनके आशीर्वाद के, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और हमने देखा कि लंबे समय के अंतराल के बाद 2 साल तक, करीब 2 वर्षों तक इस संसार की गति ठहर सी गई थी। कोरोना काल में 2 वर्षों तक हम घर से बाहर निकल नहीं पाए और उसके बाद जब कार्यक्रमों की शुरुआत हुई तो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में सेवाओं की जैसे एक बाढ़ सी आ गई और इस पार्क विंग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन ये पहला बड़ा कार्यक्रम हुआ है जो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा का, शिव बाबा का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके पश्चात आज के सत्र के जो मुख्य अतिथि हैं, श्री प्रोफेसर राजकुमार जी, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया, जो संदेश न सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसका, लेकिन संसार की जितनी भी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उनका भी यही संदेश है कि हे मानव, केवल धन के पीछे मत भाग। केवल धन, साधन, सुविधाएं, ये तन को आराम तो दे सकते हैं, मन को आराम नहीं दे सकते। और यदि मन को आराम न मिले तो ये साधन सुविधाओं का भी सुख हमें नहीं मिलता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि लाखों के पैकेजेस आज हमको मिलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ इसको खर्च करें। हम साधन सुविधाओं की भरमार अपने घर में लगा देते हैं, अपने चारों तरफ लगा देते हैं, लेकिन उनसे अल्टीमेट सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अल्टीमेट सुख तो हमें तब मिलता है जब उसके साथ साथ हमारे जीवन में अध्यात्म का बल हो। साधन सुविधाओं का होना भी जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ यदि स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में नहीं है तो ये जीवन का सुख फीका पड़ने लगता है। तो आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार जी का भी हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मोहम्मद फयाज जी, आपका भी कुछ ऐसा ही संदेश था। हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप दोनों से हम ये जरूर कहना चाहेंगे, श्री फयाज जी ने लास्ट में एक बात कही कि ब्रह्मा कुमारी ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। हम तो कहते हैं कि धन्यवाद तो परायों का किया जाता है, दूसरों का किया जाता है। ये तो आपका घर है, आप इस घर के मेंबर हैं। कहने में बात आती है, ये एक औपचारिकता है, इसलिए हम आपको मेहमान कहते हैं। वास्तव में हमें तो यही सिखाया और पढ़ाया जाता है कि परमात्मा के घर में जो भी आता है उस परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे भाई बहने हैं, तो आप हमारे बड़े भाई हैं। आपका घर है, सदा आपका यहाँ सम्मान है। जब भी मौका मिले आप सब जरूर यहाँ पधारते रहें, आते रहें और बाबा के घर से नई ऊर्जा लेकर के अपने आसपास के लोगों को भी ऊर्जावान करते रहें। इसके साथ एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारे बीच है, जिनको बार बार आपने मंच पर देखा, आदरणीय अंबिका दीदी जी। आप इस पार्क विंग की चेयरपर्सन हैं और जो भी कार्यक्रम बनते हैं उसके पीछे आप हमारी प्रेरणा स्रोत है। कहते हैं हमारी ये भारतीय परंपरा में ऐसी मान्यता है कि बड़ा व्यक्ति कुछ करे या ना करे, घर में यदि वो उपस्थित है, हमारे सामने बैठा हुआ है, तो उसकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है, मार्गदर्शन है, सेफ्टी है। तो कुछ इस तरह की हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी है, जो भी कार्यक्रम बनते हैं उसके पीछे आपका बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन रहता है, छोटी छोटी बातों का करेक्शन रहता है, और आपका हमेशा ये कंसर्न रहता है कि कैसे हम लोगों को यहाँ बाबा के घर में बुलाएं और उन्हें ईश्वरीय संदेश दें, ताकि इस भागदौड़ की दुनिया में रहते हुए मन की वो भी शांति प्राप्त कर सके और अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति कर सके। दीदी, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी अलका दीदी जी बनी बनाई देवी मूर्त है, बहुत सुंदर एक रूहानी यात्रा पर हम सबको लेकर के गई और ईश्वर की अनुभूति कराया। हम आदरणीय अलका दीदी जी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। नेहा बहन जी, आप मुंबई से हैं और इस पार्क की जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आप उनमें से एक हैं। आपने अपनी ग्रीटिंग्स हमें प्रदान की, उसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि हमारे मंच संचालक महोदय ने कहा, श्रीकांत भाई जी के लिए वो कद में भी, शिक्षा में भी, अनुभव में भी हम सबसे बहुत बड़े हैं। तो सचमुच जो भी आदरणीय अंबिका दीदी जी की प्रेरणाएं होती हैं या जो भी उनके द्वारा प्लान तैयार किए जाते हैं सेवाओं के, उसको धरातल लेवल पर एग्जीक्यूट करने में, छोटी छोटी चीजों के निर्माण से लेकर के उसको एग्जीक्यूट करने तक आपका बहुत अथक प्रयास रहता है। इस छोटी उम्र में इतना बड़ा काम, इतना ऊर्जावान होकर के एक बहुत बड़े संगठन को साथ लेकर के, आप सब जानते हैं कि किसी भी सम्मेलन को आयोजन करने में पर्दी के पीछे बहुत मेहनत की जरूरत होती है, सबको साथ लेकर के करना और कराना, ये भगवान ने खूबी आपने दी है। तो आदरणीय श्रीकांत भाई जी, हम आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे सुशील चंद्र भाई जी, जो कि DRDO इन मास में साइंटिस्ट जी है, बहुत ही सालीन व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही स्पष्ट किसी चीज को क्लियर करने की क्षमता आप में भगवान ने दी है। आप हमारे स्पार्क विंग के कोर ग्रुप मेंबर भी हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं उसको डिजाइन करने में आपका विशेष सहयोग रहता है। आपने 3 दिनों में जो कुछ हुआ उसका एक संक्षिप्त ओवरव्यू हम सबके सामने रखा। भ्राता जी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात कश्मीर से आई हुई एक छोटी बच्ची जिसका नृत्य आपने देखा, रिमझिम, हम जब जोरदार तालियों से इस नन्ही बालिका का धन्यवाद करेंगे। और जो भी बहनों ने स्टेज पर हमारा स्वागत किया फूलों से, गुलदस्ते से, तिलक से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे अनुज भाई, तब से आप देख रहे हैं इनको, सुंदर संक्षिप्त और बहुत ही सार गर्भित मंच संचालन, ये आपकी खूबी है। आप दिल्ली से हैं, पार्क के फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे स्टेज कोऑर्डिनेटर हैं और बड़े ही हंसमुख मिजाज इंसान हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में मेहनत बहुत लगती है, एक बड़े टीम वर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन उस टीम में से बहुत कम लोग ही स्टेज पर दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में जो दिखते नहीं है, जो बैक स्टेज होते हैं, उनकी ज्यादा मेहनत होती है, मेरी जहां तक समझ है। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे वो लाइट हो, साउंड हो, फूड या ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट हो, हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये जो त्रिदिवसीय सम्मेलन था उसका आज समापन है, और इस समापन सत्र में हमारी ये जो ऑडियंस बैठी है जिसका होना अति आवश्यक है। मंच कितना भी सुंदर हो, वक्ता कितने भी प्रखर हो, परंतु अगर ऑडियंस रुचि से न सुनती हो, सभा भरपूर न हो, तो भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो आप लोग अपने लिए भी एक बार ताली बजाएं, हम आप सबका भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो इस त्रिदिवसीय सम्मेलन का यहाँ समापन होता है, लेकिन जो मेडिटेशन रिट्रीट 5 तारीख को शुरू हुई थी इस पार्क की, जो कि हर वर्ष होती है, परंतु कोरोना के कारण वैसे तो ये जनवरी फरवरी में ही होती है, परंतु इस बार डिले हो गया, तो अभी दोनों कार्यक्रम एक साथ किए गए हैं, तो उसका आधे दिन का जो सत्र है अभी भी बाकी है। आप सभी यहाँ से जाएंगे, भोजन और विश्राम के बाद पुनः 4:30 बजे यहाँ आएंगे। 4:30 से 5 बजे तक योग रहेगा, और 5 से 5:30 बजे तक एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन रहेगा। दिल्ली से खास राजीव गुप्ता भाई जी हमारे बीच पधारे हैं, जो यज्ञ हिस्ट्री पर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने तैयार की है, आप सब उसको देखेंगे। 5:30 से 6:45 बजे तक हेल्थ के ऊपर, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर हमारे साउंड डिपार्टमेंट के प्रमुख हमारे आदरणीय रवि भाई जी आपको कुछ बताएंगे, और उसके बाद 5:45 से 6:30 बजे तक आगामी जो भी इस पार्क की सेवाएं होने वाली हैं या क्या की जाए उसके लिए, कैसे हम इस पार्क की सेवाओं को और गति प्रदान करें, उस पर चर्चा की जाएगी, और अंततः 6:30 से 7:30 बजे तक जो हमारा मेडिटेशन रिट्रीट है उसका कंक्लूडिंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग सत्र रहेगा। तो आप सब जरूर उसमें पधारेंगे। तो इस तरह से ये कुछ सूचनाएं भी थी। अंत में पुनः एक बार सबको धन्यवाद। आप सब बाबा के घर में यूं ही आते रहे और इस घर की शोभा बढ़ाते रहे। ओम शांति।
संजय भाई साहब का पुनः पुनः धन्यवाद एक बार। और एक मैं, क्योंकि आप ऑडियंस को काफी देर से मैं देख रहा हूँ, बहुत आराम से बैठे हुए थे, तो मेरी कोई बात याद आई कि आगे की जो सोफे खाली हैं इनको देखकर, ये रियल बात है कि कई बार जब 2007 से पहले जब मैं यहाँ आता था तो ज्यादातर जैसे आगे की सीट पर ऐसे स्लिप लगा के रखते थे कि, और जैसे कोई बैठने जाता था तो उसको कहते थे नहीं यहाँ ऑटो, तो यहाँ कोई और बैठेगा। लेकिन हमारे साथ एक भाई था, वो बड़ा जिद्दी, वो आके कहता था मुझे आगे बैठना है। रियल घटना है। तो इस पर एक शायरी बनाई अभी के अभी कि बड़ी मुश्किल से वो नीचे बैठते हैं, बड़ी मुश्किल से वो नीचे बैठते हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, बड़ी मुश्किल से वो नीचे बैठते हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं। एक बार आए और बैठ गए पहली कतार में, उठना पड़ा। एक बार आए और बैठ गए पहली कतार में, उठना पड़ा। मैंने कहा था चलो पीछे बैठते हैं। तो बहुत बहुत आप जितना भी आप लोग सभी बैठे हुए हैं, मुझे आपको देखकर यही लग रहा है कि ज्यादातर इसलिए शायद आगे नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि कोई उठा ना दे। तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और अभी बाबा की तरफ से ईश्वरी सौगात के लिए मैं दीदियों को आमंत्रित करूंगा, हमारे प्रोफेसर साहब को और मोहम्मद फयाज भाई जी को ईश्वरीय सौगात, और बाबा के घर से टोली हमारी दीदी प्रदान करेंगे। और आप सभी भी जब तक दी जा रही तो एक बार खड़े होकर आवाज ताली तो बजा दें। लास्ट का सेशन है, बहुत सुंदर, देखो कितना अच्छा लग रहा है।
दो मिनट मेडिटेशन करके जाएंगे, बाबा को थैंक्स तो करें ना। अभी आज सेशन एकदम टाइम से पूरा हुआ है, तो भी जल्दी है। अभी भोजन बन के तैयार है आपके लिए, तो चिंता ना करें। दो मिनट योग करके जाएं, बैठ जाएंगे सभी। उसके बाद श्रीराम भाई साहब एक मिनट आ गए, आप बताएं भूल गए मुझे। चलिए बाबा की याद में दो मिनट बैठेंगे हम, फिर आपको एक सूचना देनी, उसके बाद हम पूरा करेंगे।